ओम शांति। आज हमारी भट्टी का पहला सत्र शुरू करने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। अपने लिए ताली बजाओ। कल का वायदा आप सबने निभाया है और सभी समय पर यहाँ मेजोरिटी पहुंच गई है। आज हमारी भट्टी का पहला सत्र लेने के लिए हमारे बीच आदरणीय रामनाथ भाई पहुंच गए हैं। हम एक हाथ की ताली से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय रामनाथ भाई जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व है, मल्टीफोल पर्सनालिटी है। 1972 में आपको बाबा का परिचय मिला। 1978 में आप आबू मुख्यालय आए और आपने अपना जीवन समर्पित करने का फैसला कर लिया और तब से आप मधुबन में रहकर विभिन्न सेवाओं में अपना योगदान देते रहे। टीनेज में ही आपको परिचय बाबा का मिला। युवावस्था में आपने अपने एकेडमिक करियर को भी बहुत अच्छी तरह संवारा और आप मधुबन के विभिन्न डिपार्टमेंट्स में 1978 से अपनी विशिष्ट सेवाएं आप देते रहे हैं। भारत और विदेशों में अनेक बार यात्राएं कर हजारों लोगों के साथ ज्ञान और अपने योग के ध्यान के अनुभवों को शेयर किया और अनेकों को इससे आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा प्रदान की। धार्मिक प्रभा के आप हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर हैं। कई संगठनों के द्वारा आपको अब तक सम्मानित भी किया जा चुका है। आपके व्यक्तित्व की एक सबसे बड़ी विशेषता जो मैंने इतने वर्षों से आप में देखी है वो है आप बहुत नम्रचित और सरलचित हैं। ऐसे बहुत कम वरिष्ठ भाई बहन अपने बिजी शेड्यूल में मिलते हैं जो अपना एडजस्टमेंट करके एन मौके पर भी उन्हें कार्यक्रम दिया जाए, तो जहां तक संभव हो मैंने आपके पास से कभी ना नहीं सुनी और यही सिद्ध करता है। हाँ बजाओ ताली। और यही सिद्ध करता है कि ज्ञान दान सिर्फ फर्ज अदाई नहीं, ये आपके उमंग और उत्साह का विषय है। बाबा की बातों को शेयर करना और सामने जो भी है उन्हें पुरुषार्थ के लिए विशेष प्रेरित करना, ये सदा ही आपके दिल पर एक अरमान रहा है। मैं आपसे आज अनुरोध करती हूँ कि हमारा आज का जो विषय है संगम युग की अलौकिक प्राप्तियाँ, इस विषय पर केवल हमें मार्गदर्शन ही नहीं लेकिन कुछ अनुभवों को शेयर करके हमें खुद भी अनुभवों से लाभान्वित करेंगे आदरणीय रामनाथ भाई जी।
ओम शांति, ओम शांति। देखो दुनिया में इस सारे ब्रह्मांड के अंदर दो शक्तियां हैं, एक है प्रकृति और एक है पुरुष, आत्मा और प्रकृति। प्रकृति देखो समय पर सवेरे सूर्य अपने समय पर उदय होता है, अपने समय पर आएगा। अगर आप सोए हैं तो आपको तो दिखाई नहीं देगा, आपके लिए रात ही है, सूर्य तो आया, दिन तो शुरू हो गया। अगर पुरुष आत्मा मनुष्य आत्मा अगर सोया है उसके लिए तो रात ही होंगे ना, जो जगा हुआ है उसके लिए दिन है। तो यहां भी जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया ब्रह्मा कुमार इसके कनेक्शन में आया, उनको ये ज्ञान मिला कि आत्मा और शरीर ये दो चीजें हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान मिला, जिसको पता नहीं है तो उनको क्या कहेंगे, वो कलयुग में है। जिनको ये ज्ञान मिला, स्वयं निराकार सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा आकर यह आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है कि बच्चे आप आत्मा हो, आत्मा समझ मुझे याद करो, तो बहुत जन्मों के जो दुख पाप है उस पाप को मिटाऊंगा मैं। तो आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो ये ज्ञान जिसको मिला तो वो कहां है, संगम पर है, उनके लिए संगम है। नहीं तो इसी दुनिया में रहते हुए भी जिनको ये ज्ञान नहीं मिला तो वो कहां है, कलयुग में है, सोए हुए हैं, उनको ज्ञान नहीं है। अभी जिसने ये ज्ञान सुना कि संगम युग है, तो संगम युग पर क्या होता है, संगम युग पर हरेक मनुष्य जो आत्मा ने ज्ञान लिया तो वो पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकता है, कुछ भी नहीं साधारण। तो साधारण संसार में रहते हुए सब कुछ करते हुए, संसार में रहो सब कुछ कर्म करो तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। कैसे बन सकते हो, कैसे बन सकते हैं? आप अपना जीवन इस संगम युग में हीरे जैसे बना सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं है, सहज है। तो क्या तब नाम दिया, सहज राजयोग। सवेरे से रात तक बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं 8 घंटा याद करो। तो कैसे करें, कुछ नहीं है, मेहनत नहीं है। सवेरे जब उठते ही पानी पीते हो, पानी हाथ में आया, पानी देखते ही एकदम पियो नहीं, देखो शिव बाबा आप पानी पिला रहे हो, ये तो अमृत है, तो शिव बाबा को याद करके पानी पी लो, हो सकता है ना। खाना खाते हो, नाश्ता करते हो, खाना आया, शिव बाबा आप मुझे ब्रह्मा भोजन खिला रहे हो, शिव बाबा को याद करके खाना खा लो। गाड़ी चलाते हो, शिव बाबा यह आपकी गाड़ी है, हम चला रहे हैं। हर कर्म कर रहे, कहीं जा रहे हो घर से, शिव बाबा मैं आपकी सेवा के लिए जा रहा हूं। माताजी घर में खाना बनाती है, शिव बाबा आज बाबा आपको कौन सा भोग लगाए, क्या खाएंगे आप। तो ये कर्म करते करते हर संकल्प में शिव बाबा को याद करके अगर कुछ भी करते हो तो शिव बाबा कौन, अविनाशी है, विनाश नहीं होता है। वो जो देता है वो भी अविनाशी है, एक दिन के लिए नहीं देता है, एक जन्म के लिए नहीं, अविनाशी प्राप्ति कराता है। तो उस निराकार सर्वशक्तिवान शिव बाबा को याद करते, ऐसे याद करना, पानी पीते हो, खाना खाते हो, हाँ तो कपड़े धोते हो, बाबा आप भी कैसे कपड़े धोते हो, धोबी हो आप, हम भी आपके बच्चों के कपड़े धोते हैं, गाड़ी चलाते हो, सो कोई भी काम करो, घर से बाहर जाते हो, हर कर्म करते सवेरे से शाम तक संसार में रहते हुए अगर शिव बाबा को याद करके, याद मना ये ऐसा करते हो, पानी पीते हो, खाना खाते हो, तो पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो, पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। साधारण है, जैसे देखो ये भाई ज्ञान में आने से पहले इनके घर में कोई आता था, कोई गरीब भिखारी साधु संत, तो ये उनको खाना देता था। अभी 1 साल हो गया ज्ञान में चलता है, अभी भी उनके सामने वही भाई आता है, वही साधु गरीब भिखारी आता है, अभी भी वो खाना देता है। तो दोनों में कोई अंतर है, क्या अंतर है, पहले भी देता था, पहले भी वही आता था, अभी भी यही व्यक्ति है, अभी भी वही आता है, तो अंतर क्या है। हां पहले आप देते, उसको देखते ही ये गरीब है, ये साधु है, तो शरीर को देखकर कुछ देते थे, मदद करते थे, तो एक का एक गुना मिलता था। अभी आप ही हो, और वो भी वही है, कर्म भी वही है, लेकिन आपको ज्ञान मिला कि मैं आत्मा, ये सब शिव बाबा के बच्चे हैं। तो उसको देखते शरीर को नहीं देखते हो, उसको देखते ये शिव बाबा का बच्चा है, उसको देखते ये शिव बाबा को याद आया, खाना दे रहे हो, पद्मों की कमाई जमा हुई है। संसार में रहते हुए बाबा साधारण व्यक्तियों को देखो, सुदामा क्या था, कुछ भी नहीं था, गरीब था, श्री कृष्ण के पास गया तो क्या किया श्री कृष्ण ने, उसको क्या दिया, क्या उसका घर बनाया, तो भगवान ऐसा देता है। लेकिन उसके स्मृति में कर्म करो, संसार में रहो, सब कुछ करते रहो, लेकिन शिव बाबा को याद करके पानी पी लो, खाना खा लो, किसी से बात करो, कोई भी कर्म करो, तो पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। तो इसको कहते हैं गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, पवित्र मना और कुछ नहीं है। तो ये करते हुए अगर आप घर में भी झाड़ू लगाते हो, बाबा ये आपका घर है, मेरा नहीं, आपका घर कैसे होना चाहिए, साफ स्वच्छ, मक्खी मच्छर होंगे बाबा के घर में, हाँ, तो मेरा घर नहीं, शिव बाबा ये आपके घर की सफाई कर रहे हैं, आपको भोग बना के खिलाना है, बच्चों को खिलाना है, पति को खिलाना है, नहीं। तो ये स्मृति अगर रखते हुए संसार में कर्म करते हो तो ये नंबर वन पवित्रता है। तो गृहस्थ आश्रम कहा, भारत के अंदर लक्ष्मी और नारायण, राम और सीता, सन्यासी बाद में आए हैं, तो पवित्र गृहस्थ आश्रम, सनातन धर्म है, संस्कृति है, सिर्फ हर कर्म करते समय ये याद रखो, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, ये शब्द छोड़कर, शिव बाबा ये आपका घर है, ये आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों के लिए खाना बना रहे हो, आपको भोग लगाना है, ये आपका घर है, ये समझते हुए कर्म करते हो, ये नंबर वन पवित्रता है। इसमें कोई तकलीफ है, नंबर वन। तो बाबा चाहता है पवित्र, जो अभी संगम पर पवित्र है यही, तो वो सत्युग में जरूर जाएंगे। सत्युग किसको कहते हैं, पवित्र दुनिया है। पवित्र मना क्या, स्वच्छ शरीर को भी, स्वच्छ शरीर को पसीना आता है, किसी के बाजू में बैठो बास आती है, नहीं, देवताओं के शरीर से सुगंध आता था, तो शरीर को पसीना आता है, दो दफा स्नान करो सवेरे शाम, कपड़े स्वच्छ पहनो, कहीं किसी ने बना हुआ किसी का हाथ का नहीं खाओ कि हाथ स्वच्छ नहीं है, है ना, किसी का बाहर का इधर, ये पवित्रता है, स्वच्छता ही पवित्रता है। तो संगम पर क्या करना है, पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो, संसार में रहो, कर्म करो, सब कुछ करते रहो, कुछ छोड़ना नहीं, लेकिन कुछ करना है। और क्या करना है, आप कहेंगे भाई जी इतना करने से हमने जो बहुत पाप किया है वो मिटेगा, हाँ वो नहीं मिटेगा, अभी आपसे कोई पाप नहीं होगा, लेकिन पहले जो किया हुआ पाप मिटाना चाहते हो तो बाबा ने व्यवस्था दिया है, अमृत वेले सवेरे 4 से 5 आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो शिव बाबा की शक्ति से जो आत्मा के अंदर पाप है, आपके पास पाप है, बंगाल वालों के पास पाप है, नहीं, सब पुण्य आत्माओं, पुण्य आत्माओं के पाप आत्माओं, पुण्य आत्मा, देखो भाई जी कहते हैं पाप है नहीं है, पक्का मुखड़ा देख लो प्राणी, पाप है कि पुण्य है पता चलेगा ना, अगर आप डॉक्टर के पास जाओ कहते हो मुझे कोई बीमारी नहीं है, वो तुरंत निकाल के दिखाएगा ना, शुगर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, दिखाएगा ना, अभी आपको भी दिखाना पड़ेगा, मुखड़ा देख लो, कैसे देखेंगे, पाप या आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, कैसे पता चलेगा, हाँ रात को जब आंखें बंद करके टीवी देखते हो, हाँ सब लोग टीवी देखते हैं, नहीं देखते हो, रात को टीवी देखते हो, देखते हो, हाँ कौन सी टीवी, आंखें बंद करके सोते हो, स्वप्न देखते हो ना, कौन देखता है? ये आंखें नहीं, आत्मा बुद्धि। हर एक को स्वप्न आते हैं, हर एक टीवी देखते हो, अपनी टीवी देखते हो, है ना। तब कहा अगर उसके अंदर काम और क्रोध के स्वप्न आते हैं, अंदर पाप भरा हुआ है। अगर काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आ, नहीं तो चार प्रकार के स्वप्न आते हैं और दो प्रकार चलेगा। काम और क्रोध के स्वप्न अगर आते हैं उसको पाप आत्मा कहते हैं। मंजूर, ठीक है? क्योंकि सत्ययुग में काम और क्रोध नहीं है, तो सत्य पुण्य आत्मा कहा, कल देवता बनने वाले हैं। अगर क्रोध का अंश भी रह गया तो सत्ययुग में जा सकते हो, थोड़ा सा है, चलेगा। हाँ, तो उसको मिटाना पड़ेगा ना। तब बाबा ने कहा शरीर की बीमारी डॉक्टर ठीक करेगा, कि शरीर मिट्टी से बना हुआ है, इस मिट्टी के अंदर कुछ भी बीमारी हो तो मिट्टी की दवाई काम करती है, शिव बाबा नहीं करता है। तो आत्मा के अंदर कुछ पाप है, बीमारी है, तो वो शिव बाबा के शक्ति से, उसकी विधि है। क्या विधि? अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा कैसे समझेंगे? और शिव बाबा को याद करो तो उसके शक्ति से, जैसे आप इधर बैठे हो, सूर्य बाहर आया है तो सूर्य की किरणें आपको मिलती है, मिलती है सूर्य की किरणें ही, हल्का गर्म रहता है, पसीना नहीं आ रहा है। अगर बाहर जाके खड़े हो जाओ, सूर्य की किरण आपके शरीर पर पड़ती है, आप चाहो या नहीं चाहो पसीना निकलेगा। ये सूर्य शरीर की गंदगी निकालता है, पसीना निकालता है, वो भी सर्वशक्तिवान सूर्य है। वो किसका पसीना निकालता है? आत्मा का। आत्मा के अंदर पाप है, तो आत्मा समझ करके शिव बाबा को याद करना। कैसे करेंगे? कौन बताएगा? छोटी दीदी बताओ। संगम पर ही, इस सारे कल्प में, इस संगम पर ही शिव बाबा आकर ये विधि बताता है कि आत्मा समझ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो पहले पता होना चाहिए विकर्म है, फिर आत्मा समझ के शिव बाबा को कैसे याद करेंगे? ऐसा बिंदु बनने से होगा? हाँ, अभी देख लो, आपके पास मोबाइल है ना, मोबाइल छोटा सा मशीन है, उसके अंदर 10 नंबर डालो तो आपका आवाज यहां से अमेरिका चला गया। कैसे जाते हो? कैसे गया? देखा आपने, वायर गया नहीं गया? कैसे गया? ऐसे ही आत्मा भी एक मोबाइल है, उसके अंदर नंबर डालो तो आपका आवाज परमधाम में जाएगा। तो कौन सा नंबर डालेंगे? आपके मोबाइल में 0 डालते हो? नहीं, तो बाबा के मोबाइल में भी 0 नहीं, बाबा का नंबर बताओ। जैसे मोबाइल में नंबर डालते हो तो आवाज देखो, जहां 7 समुद्र पार करके चला जाता है, तो क्या आपका आवाज संकल्प परमधाम में पहुंचेगा? कब पहुंचेगा? तो उसके भी नंबर चाहिए, आत्मा के अंदर भी 5 नंबर डालना चाहिए। तो 5 नंबर अगर डालते हो, अपने आप आपका आवाज परमधाम में पहुंचेगा। तो कौन सा नंबर है जानते हो? नहीं जानते हो? अरे हाँ, तो उसी को बाबा ने कहा आत्मा समझो। तो आप भाई तो दिखाई देता है, कौन सा भाई हो? आप कहेंगे भाई जी मेरा ये नाम है, मैं यहां से आया हूं, मैं ये काम करता हूं, ऐसा ना। सभी भाई है, सभी आत्माएं हैं। कौन सी आत्मा हो आप जानते हो? मेरे अंदर कितना पाप है, मैं पाप आत्मा हूं पुण्य आत्मा हूं, वो आप जानते हो। तो अपने आप से पूछो, जब योग में बैठते हो पूछो, मैं कौन? किसको पूछा? बुद्धि को याद है, मैंने बचपन से आज तक क्या क्या पाप किया है, वो बुद्धि जानती है, वो सत्य बताएगा कि मैं पाप आत्मा हूं या पुण्य आत्मा हूं। तो पूछो मैं कौन, तुरंत बुद्धि बताएंगी। मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, बताएगा ना, ये ज्ञान मिला। फिर मेरा रूप तुरंत बुद्धि कहेंगे, मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा हूं। फिर मेरे गुण दैवी गुण और आसुरी गुण, मेरे गुण हम पवित्र थे सत्युग में, अभी नहीं, हम शांत स्वरूप थे, अब मुझे बनना है। मेरे कर्म, मैं ना आंखों से देखता हूं इधर उधर, अभी योग में बैठे आंखों से इधर उधर नहीं देखना, हाथ हिलाना नहीं, अशरीरी बनना है, स्थिर होके बैठना है। योग में बैठते कौन आया कौन गया इधर उधर नहीं। पांचवा, मैं कहां से आया, परमधाम। ये शिव बाबा के पांच नंबर है, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया। ये पांच नंबर अगर डालते हो अर्थात आत्म अभिमानी बनते हो, अशरीरी बनते हो, समझ में आया। फिर शिव बाबा को याद करो, तो शिव बाबा को क्या याद करेंगे, कैसे करेंगे, क्या याद करेंगे, ये कौन बताएगा। शिव बाबा को याद करो, क्या याद करेंगे, आत्मा थोड़ी, शिव बाबा आप तो है। हाँ अब आया ना, शिव बाबा कौन, सर्वशक्तिवान है। कौन सी शक्ति है, शिव बाबा आप पवित्रता के सागर हो, शांति के सागर हो, आनंद के सागर हो, ज्ञान के सागर हो, दुख हरता सुख करता हो, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हो, भाग्य विधाता हो, दिव्य बुद्धि दाता हो, आठ शक्तियां हैं। तो अष्ट रत्न बनते हैं, तो ये ना आठों शक्तियों पर अधिकार प्राप्त करते हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। बाप चाहता मेरे जो प्रॉपर्टी है शक्ति है उस पर बच्चों का अधिकार होना चाहिए, वर्षा है ना, तो अधिकार अपने आप ने देगा। तो एक एक शक्ति लेके मंथन करो, शिव बाबा बात करो, शिव बाबा से पहले अपने आप से बात करो, मैं कौन, फिर शिव बाबा से, बाबा आप कौन, आप पवित्रता के सागर हो, मुझे आपके जैसे पवित्र बनना है, आप शांति के सागर हो, तो आत्मा समझ शिव बाबा से बात करना है। ये योग अग्नि है, ये सिर्फ संगम पर ही शिव बाबा आके सिखाता है, सारे कल्प के अंदर एक ही समय मिलता है, अनेक जन्मों से किया हुआ पाप इस संगम पर थोड़े से समय में। तो बाबा विधि बताता है, उस विधि पूर्वक अगर शिव बाबा को याद करते हो तो उसके शक्ति से आत्मा के अंदर जो पाप भरा हुआ है तो पाप को मिटा सकते हो। तब बाबा ने कहा मैं पतित आत्मा को पावन बनाने आया हूं, अपने आप नहीं, चमत्कार नहीं करेगा, विधि बताता है। डॉक्टर कहता है ये गोली खाओ तो सिरदर्द ठीक होगा, गोली खाई नहीं तो सिरदर्द ठीक होगा, तो यहां ज्ञान सुनने से पाप मिटेगा, सुन लिया आपने लिख लिया होगा नहीं, करना है। तो बैठकर सवेरे शाम को मैं कौन, तो ये विधि संगम पर ही शिव बाबा देता है। इससे अगर पाप मिटाते हो अर्थात आज से एक महीने तक कम से कम एक दिन भी काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आया तो आपने योग अग्नि से पाप को भस्म किया है। पता होना चाहिए ना, ये दवाई लिया सिरदर्द गया नहीं तो डॉक्टर ठीक नहीं है ऐसे कहेंगे ना, तो विधि चाहिए। अगर आप शिव बाबा ने कहा आत्मा समझ मुझे याद करते हो तो मेरे शक्ति से पाप भस्म हो जाएगा, कहा आज भी कहा पाप मिटा सकते हो, तो विधि चाहिए। अगर सवेरे की गोली शाम को खाओ चलेगा, नंबर ऊपर नीचे करो तो आवाज जाएगा ऊपर, नंबर विधि पूर्वक होना चाहिए ना, एक नंबर ऊपर नीचे किया तो चलेगा नहीं। और शिव बाबा की सर्वशक्ति एक एक शक्ति लेके बात करो तो कितनी मिनट बुद्धि वहां रहती है। शिव बाबा से बात करते हो शक्तियों के ऊपर, बाबा मेरी बीमारी ठीक करो, मेरे पति को ये करो, ये सब नहीं, ये सूक्ष्म तन में करो, बाबा के कमरे में बैठ के रूरियान करो, परम धाम में विकर्म विनाश करने योग अग्नि बीज रूप स्थिति ज्वालामुखी योग ये है। तो उससे शक्तियों का चिंतन करो। तो ये विधि सारे कल्प में इस संगम पर ही मिलती है। और कभी किसी ने नहीं कहा, सारी दुनिया कहती है पाप मिटा नहीं सकते हो, समझ में आया? तो संगम पर क्या मिलता है, फिर संगम पर ज्ञान भी मिलता है। सारे कल्प में ये ज्ञान कहीं मिलता है, आत्मा कौन क्या है, आत्मा के अंदर मन, स्वामी विवेकानंद ने भी ज्ञान दिया लेकिन आत्मा कहा, तो मन क्या है, बुद्धि क्या है, संस्कार क्या है, उसका ज्ञान नहीं दिया। तो शिव बाबा ने आके आत्मा का पूरा ज्ञान दिया है, ये मन क्या करता है, ये बुद्धि क्या करती है, संस्कार कब बनते हैं, संस्कार कैसे मिटाना चाहिए। नहीं तो आपने योग के अगर संस्कार मिटाया नहीं तो सत्युग में आएंगे। हाँ, संस्कार मिटाना है। अगर नहीं मिटाते हो, रोज भाई रोज मुरली सुनता है, लिख भी लेता है और बाहर जाने के बाद गुस्सा भी करता है, तो वो कहेंगे मैं रोज मुरली सुनता हूं, रोज योग करता हूं, क्या फायदा? और बाहर जाते संसार में गुस्सा करता है, लड़ाई करता है, तो चलेगा, सत्युग में आएगा? मुरली तो रोज सुनते हो, योग भी करते हो, तो आएगा ना, आएगा? हाँ, सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है। सुन लिया लिख लिया, सुनने के बाद याद है, बाहर सारा दिन संसार में, आज बाबा ने कहा था गुस्सा नहीं करना है, ये याद रखना है। परिस्थिति आती है, सामने वाला गुस्सा करेगा, ये कलयुग है, ये कलयुग है, सामने वाला परिस्थिति आएंगी। तो मुझे अगर याद है, नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना है, क्यों? संगम पर शूटिंग होता है, संगम पर शूटिंग। अभी जो करेंगे वो 5000 साल के लिए फिक्स होगा, और 5000 साल पहले जो किया था पहले वो भी अंदर है, तो वो आएगा। अभी ज्ञान और योग की शक्ति आपके पास, कल गुस्सा किया था वो आएगा आज, आते बुद्धि कहती है आज बाबा ने कहा था गुस्सा नहीं करना है, सहन करो, चुप रहो, गुस्सा करने वाला करेगा, आपने नहीं किया तो मिट गया ना। तो संगम पर अगर नहीं मिटाया, कल गुस्सा किया था, अंदर संस्कार है, और आज मुरली भी सुनी और गुस्सा भी किया, तो क्या होगा? हू बहु रिपीट, पहले भी था, अभी भी किया, और भविष्य में भी होगा। तो ज्ञान सुन के मिटाया नहीं, दवाई है जेब में रखी है, लिया नहीं है, तो बीमारी कैसे ठीक होंगी? तो आत्मा की भी बीमारी ठीक करना चाहते हो तो ज्ञान का उपयोग चाहिए, ज्ञान याद रहना चाहिए, और याद रखने के लिए योग की शक्ति चाहिए, क्योंकि पहले से भरा हुआ है पाप, तो मुरली सुनेंगे तो याद नहीं रहेगा ना, क्यों? अंदर भरा हुआ किचड़ा, तो ये भरेगा रहेगा, मुरली याद रहेंगी नहीं। तो इसलिए कहा पहले योग चाहिए। तो योग से तब बाबा ने भी देखो व्यवस्था बनाया, सवेरे उठते ही पहले शिव बाबा को याद करो, पाप मिटाओ, खाली जगह हो गया, फिर मुरली सुनते हो, खाली जगह पर मुरली के पॉइंट बैठेगा, नहीं तो जगह खाली नहीं, ऐसा है ना, सफाई करना पड़ेगा ना। तो पहले योग करके अमृत वेले उठ के तो जगह करो, अंदर बहुत किचड़ा भरा हुआ है, सफाई करो, फिर मुरली जो सुनते हो वो याद रहेगा। अगर मुरली के पॉइंट याद है, कर्म करते करते संसार में समस्या परिस्थिति आती है, नहीं ऐसे नहीं, कोई भी हो, तो एक व्यक्ति क्या करता है, याद रहता है, अरे आज गुस्सा नहीं करना है, वो करता है करने दो, मुझे नहीं करना, अपने को रोकता है, तो परिवर्तन करता है। तो ज्ञान का उपयोग किया, नहीं ज्ञान सुनने के लिए लिख के रखने के लिए नहीं, उपयोग करो आज ही, कल दूसरा सुनाएगा, कल बाबा कहेगा किसी का हाथ का दिया हुआ नहीं खाना है, किसी का स्वच्छता नहीं है, तो कल दूसरा करो, आज ये करो कल दूसरा करो। आज क्या सुनाया था करने के लिए, मुरली सुनी? आज एक बाबा ने बच्चों को काम दिया था, क्या दिया था? आपके पास खुशी है? कहाँ है दिखाओ? हाँ खुशी तो है आपके पास। हाँ कौन सी खुशी? हाँ खुशी वो, अगर आपको बाजू वाला भाई मिला, उसको देखते भाई जी आज बाबा ने देखो बहुत अच्छी मुरली के पॉइंट सुनाया, अगर एक मुरली के पॉइंट सुनाते हो और उसका चेहरा देखो खुश हो जाता है। वो भी एक कहता है भाई जी बाबा ने ये भी कहा, तो आपने बांटी और उसने भी आपको दिया। तो मुरली के पॉइंट सुनाना है, ये गुलजार दादी बोलती थी, खुश रहो खुशी बांटो। तो कहां मिलती खुशी? तो रोज शिव बाबा देता है। तो एक मुरली के पॉइंट याद रखना है, भूल जाते हैं, लिख के रखो। मुरली क्लास से बाहर जाते ही कोई मिला, भाई जी आज बाबा ने देखो पढ़ के बताओ, अगर याद नहीं रहता भाई जी आज बाबा ने देखो बहुत अच्छी बात बताया। तो ज्ञान दान करना सीखो, सिर्फ मुरली सुना लिख के रख दिया कोई काम का नहीं, और लिखा नहीं, बाहर जाते याद ही नहीं रहता, किसी को देखते याद ही नहीं है, तो कैसे दान करेंगे? तो ब्राह्मण वो है जो सवेरे से रात तक आज के मुरली के पॉइंट एक दो तीन चार कितने लोगों को सुनाते हो, जितने लोगों को आज की मुरली के पॉइंट सुनाते हो, ये दवाई है क्रोध को मिटाने की। भाई जी क्रोध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन क्रोध आता है कहां से आता है? बंगाल में मिलता है क्रोध? कहां से आता है? मोटा भाई को पूछो क्रोध कहां से आता है? ब्रह्मा बाबा जैसे लगता है ना, देखो ब्रह्मा बाबा जैसे मूछ है, हाँ लेकिन बाबा मोटा नहीं था, बारीक था, ये तो मोटा है। आ क्रोध कहां से आता है? हाँ मुरली के पॉइंट याद रखते हो और आज की मुरली का एक दो तीन चार लोगों को सुनाते हो तो क्रोध अपने आप चला गया। कितना दिन? कम से कम 10 दिन, एक दिन नहीं, रोज 10 दिन मुरली के पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट याद रखो और सवेरे से शाम तक, दिन में सवेरे शाम को रात को कोई मिला किसी को देखते भाई जी माता जी आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, वो ब्राह्मण, तो उनको क्रोध करना चाहते हुए भी क्रोध नहीं आएगा। क्यों? ज्ञान जहां है, ये ज्ञान संजीवनी बूटी है, बेहोश को भी होश में लाता है। तो ज्ञान अगर है तो क्रोध नहीं है, जहां ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? रहेगा ना? तो क्या करना, क्रोध करना चाहते हो भाई बताओ? करना चाहिए, थोड़ा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? पक्का? तो सब छोड़ के जाएंगे, तो छोड़ेंगे तो दूसरों के पास जाएगा। हाँ उसके जगह पर मुरली के पॉइंट कल से नोट करना, आज से ही सवेरे से शाम तक कितने लोगों को मुरली सुनाए गए? आप नहीं सुनाएगा, आप कह रहे थे मैं सबको खुशी बांटूंगा, तो आज बांटी नहीं बांटा, अभी शुरू करेगा, शाम तक कितने लोगों को देगा? दो ही। एक व्यक्ति को आज की मुरली के पॉइंट सुनाते हो, एक जन्म के लिए धनवान बनेंगे, ज्ञान धन है। तो कितने जन्म के लिए धनवान बनना चाहते हो छोटी दीदी बताओ? कितने जन्म के लिए धनवान बनना चाहते हो? ठहरे ठहरे वो बताएंगे, ठीक कितने जन्म के लिए बताओ? हाँ देखो छोटी दीदी बोल रही थी 21 जन्म के लिए, 22वें जन्म में गरीब हो गया तो चलेगा? इसलिए पूछ रहा था, आपने 84 कह दिया तो ये सोच रही थी 21 जन्म, हाँ तो 21 22वें जन्म में गरीब होगा तो चलेगा? नहीं, तब बाबा ने कहा एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, सदा अपने अपने ही, कभी गरीब नहीं बनना है, आज से शुरू करो कि मुरली के पॉइंट सवेरे दिन में शाम को 5-10 लोगों को आज के मुरली के पॉइंट सुनाना है। जो भाई कहते हैं हम भाई जी जरूर सुनाएंगे वो हाथ उठाओ, बाकी जो नहीं कर सकते नहीं उठाना, जो कर सकते हो उठाओ। देखो मोटा भाई, अरे मोटा भाई ने उठाया। हाँ ये भाई कहता मैं नहीं दान करूंगा, सब कुछ पेटी में भर के रख देगा। देखो उसने झोला रखा, झोला में रखे, उसने हाथ उठाया नहीं, कहता मैं दान नहीं करूंगा, कंजूस है ना। हाँ तो दान करना सीखो, सिर्फ मुरली सुनना नहीं है, सुनकर बाहर जाते ही, गेट के बाहर जाते ही शुरू करो, नहीं तो भूल जाएंगे और कोई बात याद आएंगी। दूसरी विचार आने से पहले आदत डालो तो देखना सदा खुश रहेंगे, औरों को भी खुशी मिलेंगी। और जो क्रोध व्यर्थ विचार ये सब है वो सब मिटाने का तरीका ये शुभ बाबा का ज्ञान, ये कोई मनुष्य आत्माओं का नहीं है, ये सिर्फ संगम पर ही मिलता है। और कभी मिलेगा? सत्ययुग में मिलेगा? कलयुग में मिलेगा? नहीं, संगम पर मिलता है। कर सकते हो ना? हाँ, तो इसलिए कहा संगम पर क्या क्या मिलता है, तो संगम पर शूटिंग होता है। आप कल क्या बनना चाहते हो? हाँ, आज लक्ष्य रखो। अगर आज आप मकान में रहते हो, दो कमरे हैं, आप कहते नहीं मुझे चार कमरे चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, तो अपने आप बनेगा? तो पुराने मकान में रहते हुए प्लानिंग करेंगे ना, फिर देखे ना उतना पैसा भी चाहिए, 10 लाख रुपया चाहिए, तब बनाएंगे ना। तो यहां भी आज शरीर में इस जीवन में रहते हुए प्लानिंग करो, सोचो मुझे इस शरीर के बाद झोपड़ी में रहना है कि महल में रहना है ना। अभी से सोचेंगे ना, तो कितने महल चाहिए, कितना मकान चाहिए, कमरे चाहिए, 5 रूम वाला चाहिए कि 1 रूम वाला चाहिए, तो उसके लिए कितना खर्चा चाहिए। तो धन, ज्ञान धन उतना बांटो, उतनी सेवा करो, है ना। तो सेवा उतना, इतने लोगों को ज्ञान सुनाओ, अपने आप तो नहीं, ऊपर से धन नहीं देगा बाबा, आपको ज्ञान धन बांटना चाहिए, तब धन जमा करते हो, भाग्य जमा, तन से मन से धन से सेवा करो। कर सकते हो? समय मिला, खाली समय मिला, किचन में जाके सब्जी काटो, कहीं सेंटर में कुछ गार्डन है पानी डालो, सेंटर में सफाई करो, बाबा की सेवा है, यज्ञ की सेवा है। तो वो आपको शक्ति देता, तन से करो, मन से करो, धन से करो, है ना, जमा करो, नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा। कुछ लेके आए थे, कुछ ले जाएंगे। हाँ तो तन मन धन सेवा करना चाहिए, अपने अपने बनेगा, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस अपने अपने मिलेगा, तीनों चाहिए। तो संगम पर सारे कल्प के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो अब भी करो, अब भी बीज बोएंगे तो इसको कहा कल्प वृक्ष। ये सारे कल्प आपको फल देगा। तो संगम पर बीज बोना है तो कौन सा? तन से मन से धन से, संबंध संपर्क में कोई मिलता है, ज्ञान के पॉइंट सुनाओ, अच्छी बातें सुनाओ। आज बाबा ने मुरली में कहा, आपने बताया नहीं, आज मुरली में क्या काम करने के लिए कहा? कुछ काम दिया बाबा ने, क्या दिया आज बाबा ने कहा? हर एक के प्रति कल्याण की भावना रखो, किसी को देखते ही शुभ बाबा इनका कल्याण हो जाए, इनको भी सत्युग में ले जाओ, इनको भी सदा सुखी बनना चाहिए। तो किसी को देखते ही औरों का कल्याण के प्रति सोचते हो तो कल्याणकारी आत्मा हो, औरों का कल्याण करने वाले हो। तो संगम युग किसका है? कल्याणकारी युग है ये। स्वयं का भी कल्याण कर सकते हो, औरों का भी कर सकते हो। सत्युग में कर सकेंगे? कलयुग में होगा? संगम पर यह विशेषता है। जितना आप अपना और औरों का कल्याण करना चाहते हो तो इस संगम पर कर सकते, ये याद रखो। संगम पर ही सारे कल्प के लिए क्या क्या चाहते हो वो संगम पर बीज बोना है। क्यों? स्वयं निराकार सर्वशक्तिवान शिव बाबा आपके साथ है। अगर कुछ मिटाना भी चाहते हो तो डायरेक्टर जब साथ रहता है वो कहेगा ये मिटाओ, ये ऐड करो, तो उसके डायरेक्शन के अनुसार चलता है। ये फिल्म बन गई लेकिन उसको कुछ एडिशन करेक्शन कर सकते हो, कब तक? जब तक डायरेक्टर साथ है। अगर डायरेक्टर चला गया तो होगा? मिटा सकते हो कुछ? तब बाबा कहता बच्चे संगम पर, आज बाबा ने कहा मैं स्वयं आया हूं, मेरे श्रीमत पर चलो। तो कुछ अगर गलत है तो उसको मिटा सकते हो, अच्छे कर्म कर सकते हो। कभी श्रीमत क्या है? आज की मुरली, आज ये मुरली ली, ये पॉइंट श्रीमत कि बच्चे आज बाबा ने क्या श्रीमत दिया, हर एक आत्मा के प्रति हाँ कल्याण की भावना रखो, इसका कल्याण हो। हाँ इन्होंने कल गुस्सा किया था पता है, तो एक कल्याण की भावना आएंगी। हाँ तो क्या करेंगे? अब उसको देखते आंखें बंद करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ दिखाई देगा, पता भी है इन्होंने कल गुस्सा किया था, फिर भी आज बाबा का श्रीमत है। बाबा आज आपने कहा, यह आपका बच्चा है, कल इसने गुस्सा किया था, इसको आप शांति की शक्ति दे दो, दोबारा ऐसा ना करे, है ना? आएगा नहीं, ऐसे नहीं, आंखें बंद नहीं करो, उसको देखते आप गलत विचार आएगा तुरंत समझाओ, कि बुद्धि में याद अगर है तो समझा सकते हो, नहीं तो नहीं। नहीं तो इसको देखते ही माता जी थोड़ी कहेंगे, इनको भाई जी कहेंगे, कौन सा भाई है ये, देखो इन्होंने एक साल पहले कितना गुस्सा किया था, याद नहीं आएगा? आएगा। हाँ आते ही तुरंत बुद्धि को पता है, जिस जो रोज मुरली सुनता है, लिखता है, औरों को सुनाता रहता है, तो ज्ञान जागृत रहता है। नहीं तो लिखा हुआ है डायरी में है, बुद्धि में रहना चाहिए। क्यों? कि ये सारे शरीर को कौन चलाता है? आत्मा में भी कौन चलाता है? बुद्धि चलाती है। तब कहा रात को सोते हो आंखें बंद करके तो भी टीवी देखते हो, है ना? आत्मा बुद्धि सोती नहीं है, जागती ज्योत है, मरने के बाद भी देखो दीपक जला के रखते हैं, वो बुद्धि। तो बुद्धि सब कुछ करती है, सारे शरीर को कौन चला? इधर बैठे बैठे इधर देख लो, कौन बताता है? बुद्धि आपको बताता है, आंखों को हिलाओ। इधर बैठे बैठे याद आती है, अरे आज इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, ये कौन देता है याद? बुद्धि बताती है। हर कर्म करते जैसे खाना सामने आया तो तुरंत याद आएगा, बाबा ने कहा था दृष्टि दे के शिव बाबा को याद करके खाना खा लो। वो याद कौन बताएगा? मन बताएगा? बुद्धि बताएंगी। पानी पीने के लिए प्यास लगी, पानी सामने आया तो क्या याद आएगा? हाँ बाबा ने उस दिन कहा था कि दृष्टि देकर शिव बाबा ज्ञान अमृत पिला रहे है ना, जैसा पानी वैसे वाणी। आपके मुख से भी क्रोध निकलेगा अगर बाबा को याद करके पानी पीते हो, उधर से उस मुख से क्रोध निकलेगा नहीं, है ना? तो पानी पीते हो, खाना खाते हो, जैसा अन्न वैसा तन। बीमारी होने का कारण बाबा को याद करके नहीं खाते हो, बाहर का किसी का हाथ का खाते हो, कोई हाथ साफ नहीं, कैसे बनाते हैं? बाहर का खाना चाहिए? हाँ कभी कभी खाना चाहिए। नहीं बाहर का नहीं खाते हो? बताओ, सभी नहीं बताते हैं। हाँ बाहर का बना हुआ मशीन से बनता है, चलेगा? मशीन भी अपने आप चलता है तो कोई तो किसी का तो हाथ लगेगा ना कि नहीं लगेगा? जब तक आपके हाथ से जो अच्छा तरह बना सकते हो, जब नहीं बना सकते, बीमार हो गया हॉस्पिटल में तो नर्स खिलाएंगे, क्या करेंगे उधर? हाँ तो भी वहां भी अगर कोई बाबा के बच्चे प्रबंध कर सकते हैं, कोशिश करना चाहिए। नहीं है लाचारी में अलग, कुछ नहीं हो सकता है तब बात अलग। जब तक हो सकता है, किसी का हाथ से दिया हुआ, सफाई नहीं है, कैसे बनाया, बाहर की चीज, ये स्वच्छता समझो। बार बार कभी कुछ करते हो हाथ धो लो, हाँ तो कहीं भी कुछ खाया रास्ते पर कुछ फेंकना नहीं, कागज फेंकना नहीं, कहीं थूकना नहीं, करते हो? या भारत में इतनी गंदगी किसने किया? आपने किया? हाँ, केला खाया रास्ते पर फेंकते हो, कुछ खाते हो रास्ते पर, ट्रेन में अभी आए खा के कहां फेंका? रास्ते पर फेंका? फेंका नहीं, क्या किया? हाँ, एक थैली में डालो और कचरे के डब्बे में डालना, बच्चों को भी सिखाना ये गंदगी। भारत स्वच्छ भारत स्वर्ग बनेगा, कैसे बनेगा? वो अपने आप तो नहीं बनेगा ना, शिव बाबा ऊपर से आके बनाएगा, बच्चों के द्वारा बनाएगा। तो बच्चों को सिखाता है, बच्चे कहीं भी कुछ फेंकना नहीं। खाना भी लेते हो, बहुत खाना लिया फेंका नहीं, थोड़ा खाना ले लो, जितना चाहे उतना ही ले लो, अगर दोबारा ले लो, लेकिन खाना फेंकना, एक दाना भी फेंकना नहीं चाहिए। कितना लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, आपने लिया ज्यादा फेंक दिया, थोड़ा ले लो दोबारा ले लो, फेंकना नहीं खाना। तो इसको कहते हैं कि जीवन में स्वच्छता हो, पवित्रता अपने आप ऊपर से नहीं आती है। ऐसे कर सकते हो, संगम युग पर क्या क्या करना चाहिए, सारे कल्प में जो नहीं कर सकते हो वो संगम पर कर सकते हो। बहुत जन्मों का विकर्म विनाश करना है, ज्ञान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, सारे कल्प में क्या चाहते हो वो संगम पर शिव बाबा आके ज्ञान देता है। तो संगम पर खुशी, सबको खुशी बांटना चाहते हो, जो शिव बाबा ज्ञान देता है वो आप भी याद रखो, चिंतन करो, औरों को भी दान करो। जितने लोगों को करते हो, एक व्यक्ति को अगर आज मुरली के पॉइंट सुनाते हो, एक का पदम गुना, एक जन्म के लिए धनवान बनेंगे। कितने जन्म के लिए बनना चाहते हो? आपके हाथ में है। आप कहेंगे हमको गरीब क्यों बनाया? बाबा ने नहीं बनाया, आपने दान नहीं किया। करते हो? किया नहीं? छोटी दीदी ने आज किसी को मुरली सुनाई नहीं, देखो। तो गरीब बनेंगे कि श्रीमंत बनेंगे? हाँ, दान करेंगे तो बनेंगे ना, अपने आप ऊपर से शिव बाबा तो नहीं देगा, पैसा भेजेगा नहीं। आप ज्ञान दान करो, याद रखो, एक मुरली के पॉइंट रखो लिखकर, एक ही, जो भी सारे मुरलियों से, ये संगम पर ही कर सकते हो, सारे कल्प में ये नहीं होगा। और लास्ट आज बाबा ने कहा क्या करो, हरेक के प्रति शुभ भाव, पता है ये बहुत खराब है तो भी शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इसका कल्याण करो, इसको सद्बुद्धि दे दो, ये बहुत दुख देता है, बहुत गुस्सा करता है, हाँ खराब है तो और खराब करना चाहिए? हाँ, बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चों के बुद्धि में औरों के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना, कि गलत सोचना चाहिए, गलत कर्म करने वालों को सजा देना चाहिए? मोटा भाई क्या कहता है, अगर किसी ने गलत किया तो उसको सजा देना चाहिए ना? नहीं देने चाहिए, गलत किया उसने जेल में डालना नहीं चाहिए? नहीं, वो बताएगा, बताओ, नहीं देना चाहिए तो क्या करना चाहिए? क्षमा करेंगे तो और करेगा, चलेगा? हाँ, तो भी शिव बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे, सजा नहीं, सिखाओ, समझाओ, 10 दफा समझाओ, क्षमा दया दुनिया वाले नहीं कर सकते हैं, भगवान के बच्चे ही कर सकते। उनमें भी भगवान के बच्चे कौन, जो रोज ज्ञान याद रखते हैं, रोज अपने बुद्धि को स्वच्छ रखते हैं, योग करते हैं, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता है, ऐसे ही है ना। तो इसके लिए संगम पर क्या करना वो याद रखना, ये कल्याणकारी युग है। अगर संगम पर अभी शिव बाबा आया, किसके लिए संगम युग है? सबके लिए नहीं, जो उठे हैं, जिनको शिव बाबा का ज्ञान मिला, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए, ब्रह्मा कुमारी में गए, उनके लिए संगम युग है। बाकी दुनिया के लिए वो सोए है अभी भी, उनको सूर्य उदय हो गया पता ही नहीं है, नींद में है। जो जागे हुए हैं, तो हम, शिव बाबा ने हमको जगाया, ज्ञान दिया है, तो उस ज्ञान का यूज करने का समय संगम युग है। करेंगे? कर सकते हो? अभी 5 मिनट शिव बाबा को याद करें, सुना बहुत, क्या याद करेंगे? मोटा भाई आप बताओ, शिव बाबा को याद करो, क्या करेंगे? विधि बताया, अभी आराम से बैठो, आंखें खोल कर, आंखें बंद करना है नहीं, और बाबा को देखते रहो। हाँ, आंखें बंद किया तो दिखाई देगा, हाँ सफेद लाइट रहेगा, फिर बाद में गीत बजाएगा। तो बैठ करके अपने आप से पूछो मैं कौन। अगर मन नहीं चलता है तो नींद आ जाती है। देखो कितने लोगों को नींद आती है, कारण चलता नहीं है, है ना। चलाओ मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। मेरा रूप, मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा हूं। मेरे गुण, मैं पवित्र था सत्युग में, अभी नहीं हूं, अभी बनना है। मैं शांत स्वरूप था सत्युग में था, अभी बनना है। और मैं क्या करता हूं, ये शरीर को चलाता हूं, अभी शरीर को इधर उधर नहीं देखना है। तो क्यों बैठा हूं, शिव बाबा को याद करना चाहिए। शिव बाबा कहां है, परम धाम में। कौन है वो, पवित्रता का सागर है। बाबा मुझे आपके जैसे पवित्र बनना है, ऐसे बात कर सकते हो। आंखें बंद करने की जरूरत है नहीं, आंखें खोलकर आराम से इधर देखते रहो, अपने आप से बात करो, न नींद आएंगी, न व्यर्थ विचार, न रावण आएगा, न माया आएंगी। अगर चुपचाप ऐसे देखते रहेंगे तो नींद आएंगे। ठीक है, करे 5 मिनट, ठीक है।